नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत और कनाडा के बीच बढ़ती तल्खी के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वहां बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की गई। साथ ही जो नागरिक कनाडा की यात्रा करने वाले हैं वो भी सावधानी बरतें। एडवाइजरी में कहा गया, कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से समर्थित घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और यात्रा पर विचार कर रहे लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है। हाल ही में मिली धमकियों ने विशेष रूप से भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के उन वर्गों को निशाना बनाया जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करते हैं। इसलिए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को आरोप लगाया कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन सांसदों को दी गई संविधान की प्रति में प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द गायब थे। मामले को गंभीर करार देते हुए चौधरी ने कहा कि शब्दों को बड़ी ही चालाकी से हटा दिया गया। उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार की मंशा पर संदेह व्यक्त किया। इन सब के बीच एक बार फिर सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों के अर्थ और उनके महत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। आइए जानते हैं कि ये शब्द कैसे संविधान में शामिल हुए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संविधान की जो नई प्रतियां हमें दी गईं, जिन्हें हम अपने हाथों में पकड़कर नए संसद भवन में प्रवेश कर गए, इसकी प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं है। अधीर रंजन ने कहा कि हम जानते हैं कि ये शब्द 1976 में एक संशोधन के बाद जोड़े गए थे, लेकिन अगर आज हमें कोई संविधान देता है और उसमें ये शब्द नहीं है तो ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मैंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बुधवार को सरकार से महिला आरक्षण विधेयक को जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से अलग करने का आग्रह किया, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर इसके क्रियान्वयन में कई वर्षों तक देरी होगी। मायावती ने इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर विधेयक का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करने का आरोप लगाया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करेगी, भले ही उसकी मांगे पूरी न हो। उन्होंने सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ खंडों को हटाने का आग्रह किया कि मसौदा कानून तुरंत लागू हो जाए। उन्होंने कहा कि विधेयक के कुछ प्रावधानों को इस तरह से तैयार किया गया है कि आरक्षण का लाभ अगले 15 या 16 वर्षों तक या बाद के कई चुनावों तक महिलाओं तक नहीं पहुंच पाएगा। आंध्र प्रदेश पुलिस ने फाइबर नेट घोटाले में राज्य सरकार को 114 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आरोप लगाते हुए तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की हिरासत के लिए कैदी ट्रांजिट वारंट जारी करने की अर्जी दी। आंध्र प्रदेश CID की पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर YN विवेकानंद ने बताया कि वारंट मंगलवार देर रात विजयवाड़ा में एंटी करप्शन कोर्ट में दायर किया गया। CID ने आरोप लगाया कि 330 करोड़ रुपए के AP फाइबर नेट प्रोजेक्ट के चरण एक के तहत एक पसंदीदा कंपनी को ठेका देने के लिए टेंडर में हेराफेरी की गई थी। CID का आरोप है कि टेंडर आवंटित करने से लेकर परियोजना पूरी होने तक कई अनियमितताएं हुई, जिससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। आरोप है कि नायडू ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री रहते हुए व्यक्तिगत रूप से फाइबरनेट परियोजना को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बजाय ऊर्जा I&I विभाग को देने की सिफारिश की थी। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को सरकार से आग्रह किया कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के कानून बनने के साथ इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि इसे लागू करने में देरी भारत की महिलाओं के साथ घोर नाइंसाफी होगी। उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले संविधान विधेयक 2023 का समर्थन किया और ये भी कहा कि जाति जनगणना कराकर इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपने पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान को याद किया और कहा कि इस महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने से उनके दिवंगत पति का अधूरा सपना पूरा होगा। सोनिया गांधी का कहना था कि इस विधेयक को लागू करने में देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। हाल ही में केरल से लौटे पश्चिम बंगाल के एक युवक को निपाह वायरस संक्रमण के लक्षणों के साथ कोलकाता के बेलियाघाटा IDअस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि वर्धमान निवासी युवक को तेज बुखार, मतली और गले में संक्रमण की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह केरल में प्रवासी श्रमिक के रूप में काम कर रहा था। उनके परिवार के एक सदस्य ने कहा कि संक्रमण की पुष्टि के लिए आवश्यक परीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।